नमस्कार भारत, 6 नवंबर बुधवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। दिल्ली में पुलिस वकील विवाद पर 11 घंटों तक चला पुलिस कर्मियों का धरना, सिस्टम पर उठे सवाल।
हमारे माँ बाप ने हमें यहाँ भेजा है, हम अपने बच्चों को पालने के लिए भर्ती हुए, हम पिटने के लिए भर्ती नहीं हुए, वो सब वकीलों का पता लेने गए, हमारा पता लेने कोई नहीं गया।
गुजरात किनारे पहुँचने से पहले कमजोर पड़ जाएगा चक्रवात महा।
दीव का आसपास वो क्रॉस करेगा जिस साइक्लोनिक स्टॉर्म, मैक्सिमम स्पीड ज्यादा से ज्यादा 80 किलोमीटर पर आवर फैलने का संभावना।
और महाराष्ट्र में सरकार बनाने की डेडलाइन में 4 दिन शेष पर गतिरोध कायम।
देवेंद्र फडणवीस, सरसंघचालक मोहन भागवत को भी जाके मिले हैं, हो सकता है उनके हस्तक्षेप के बारे में उनको कहा होगा।
अखबारों की समीक्षा भी होगी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। दिल्ली में पुलिस कर्मियों का लगभग 11 घंटे तक चला विरोध प्रदर्शन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद मंगलवार रात खत्म हो गया। दिल्ली की 30,000 कोर्ट परिसर के बाहर शनिवार को पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प के बाद भारी संख्या में पुलिस के जवान मंगलवार सुबह से ITO स्थित दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक ने माना है कि यूक्रेन के एक शीर्ष अधिकारी से कहा गया था कि यूक्रेन को आर्थिक सहायता तभी मिलेगी जब वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन के खिलाफ जांच शुरू करेगा। यूरोपीय संघ के लिए अमेरिका के राजदूत गार्डन सोनलैंड ने कहा कि ट्रंप के वकील रूडी जुलियाने को यूक्रेन पर जाँच के लिए दबाव बनाना गलत था। गॉर्डन सोनलैंड का ये बयान अमरीकी संसद में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ चल रही भाभियों की प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर प्रकाशित किया गया है। उत्तरी मैक्सिको में संदिग्ध ड्रग माफिया के हमले में 6 बच्चों और 3 महिलाओं समेत कम से कम 9 अमरीकी नागरिकों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि अब वक्त है कि अमरीका ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई के लिए मैक्सिको की मदद करे। वहीं मैक्सिको के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि किसी भी सहयोग से देश की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा नहीं होना चाहिए। जिस भी तरह के सहयोग की जरूरत है, मैं उसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप से बात करूंगा, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए मैं देखूंगा कि वो कैसे मदद कर सकते हैं, जैसे वो खुद की संप्रभुता की रक्षा करते हैं और जैसे सभी दूसरे देश करते हैं। ये थे मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ब्राजील के सांसदों ने मांग की है कि उन 2 कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों पर नरसंहार और दूसरे अपराधों के तहत मामला दर्ज किया जाए जिनकी लापरवाही से एक बांध टूटा और करीब 300 लोगों की मौत हो गई। ब्राजील के खनन नियामक का कहना है कि इस कंपनी के अधिकारी प्रशासन को अगर पहले बता देते कि बांध टूट सकता है तो जनवरी में हुए इस भयानक हादसे को टाला जा सकता था। 11,000 वैज्ञानिकों ने उस अध्ययन का समर्थन किया है जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए गंभीर और स्थायी उपाय नहीं किए जाते तो मनुष्य को इसके बहुत बुरे परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के रिसर्चरों ने इस रिपोर्ट को 40 साल के डेटा के आधार पर तैयार किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया क्लाइमेट इमरजेंसी के दौर में है। रिपोर्ट के एक लेखक प्रोफेसर विलियम रिपल ने BBC से कहा,
We're just starting to see storms becoming more intense.
हम देख रहे हैं कि तूफान और तीव्र हो गए हैं, ज्यादा आ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, बवंडर आ रहे हैं। हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है और इसे रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ये थे रिपोर्ट के एक लेखक प्रोफेसर विलियम रिपल के शब्द। इराक की सरकार ने राजधानी बगदाद से कर्फ्यू हटाने का फैसला किया है ताकि सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे नाराज लोगों को शांत किया जा सके। पिछले एक हफ्ते से बगदाद में रात के वक्त कर्फ्यू लगा दिया जाता था जिससे एक महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे प्रदर्शनों को नियंत्रित किया जा सके। इराक के प्रधानमंत्री अदेल अब्देल महदी ने उनके इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया है। BBC समाचार।
ये ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भारत और मैं हूं कुलदीप मिश्र। दिल्ली में पुलिस मुख्यालय पर कल करीब 11 घंटे तक चला पुलिसकर्मियों का विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया। पुलिसकर्मियों ने आला अधिकारियों के आश्वासन पर अपना धरना खत्म कर दिया। पुलिस और वकीलों के टकराव के मामले में आज कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, लेकिन कल जिस तरह पुलिसकर्मी सड़क पर उतरे, नारेबाजी की और घंटों तक सड़क पर जामा चलता रहा, उसने पूरे सिस्टम को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हैं वो सवाल, बता रहे हैं आदर्श राठौर।
हमारे माँ बाप ने हमें यहाँ भेजा है, हम अपने बच्चों को पालने के लिए भर्ती हुए, हम पिटने के लिए भर्ती नहीं हुए। देखो जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वो सब वकीलों का पता लेंगे, हमारा पता लेने कोई नहीं गया।
दिल्ली पुलिस के इतिहास में न पहले कभी ऐसे नारे लगे थे और न ही ऐसी शिकायतें सार्वजनिक तौर पर सुनाई दी थी। बीते शनिवार को वकीलों के साथ शुरू हुए टकराव में खुद को पीड़ित बताने वाले पुलिसकर्मी कल सड़कों पर थे। धरने पर बैठे पुलिसकर्मियों को मनाने के लिए कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने अनुशासन की दुहाई दी।
दिल्ली पुलिस के लिए एक परीक्षा की घड़ी है, तो ये स्थिति को हम परीक्षा की तरह माने और हम पे जो जिम्मेदारी दी गई है कि कानून को हम संभालें और कानून के रखवाले की तरह हम बर्ताव करें, उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें।
शाम को ज्वाइंट कमिश्नर देवेश श्रीवास्तव हर मांग मानने का आश्वासन देते रहे।
एक और आपकी मांग है कि पुलिस वालों की जो कंप्लेंट है उन पे FIR की जाए, उन पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो मैं ये बता दूं, चाहे वो साकेत का हो, चाहे 30,000 का मसला, जहां पे भी किसी भी पुलिसकर्मी ने कोई भी शिकायत दर्ज करवाई है, उसमें उचित तौर पे और प्रॉपर सेक्शंस ऑफ लॉ में FIR दर्ज की गई है और पूरी तरह से उसकी जांच की जाएगी।
लेकिन धरना खत्म हुआ रात करीब 8 बजे। तब तक पुलिसकर्मी और उनके परिजन इंडिया गेट तक विरोध की अलख जगा चुके थे। चंडीगढ़ जाने वाला राजमार्ग जाम कर चुके थे और दिल्ली पुलिस की साख पर लग चुके थे ढेरों सवाल। पूर्व पुलिस अधिकारी आमोद कंठ कहते हैं कि इस स्थिति को टाला जा सकता था।
ये बहुत गलत है। मैं समझता हूँ कि ये जो फोर्स है, उसके जो लीडर होते हैं, उनमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कि अगर उनको कोई बात सही लगती है तो उसको हर लेवल तक उनको जा करके उसको असेट करना चाहिए। दिल्ली के कमिश्नर पुलिस, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो इस बात को समझते हैं। ये तो बहुत भयावह स्थिति है, ऐसा तो कभी मैंने भी देखा नहीं।
पूरे विवाद की शुरुआत शनिवार 2 नवंबर को दिल्ली की 30,000 कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच पार्किंग को लेकर विवाद से हुई। ये विवाद लगातार बढ़ता गया और जब साकेत कोर्ट के बाहर एक पुलिसकर्मी की कथित पिटाई का वीडियो सामने आया तो पुलिसकर्मी आक्रोशित हो गए। वहीं वकीलों की ओर से भी शिकायतें सामने आ रही हैं। वरिष्ठ वकील विदाग गुप्ता कहते हैं कि ये मामला सिस्टम की कमजोरी को उजागर करता है।
जांच के लिए एक न्यायिक आयोग बना है, मामला सब ज्यूडिस है, कोर्ट में भी है, कल सुनवाई भी होगी। जो वीडियोज आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि आधे अधूरे हैं, कई दोनों पक्ष के अलग अलग बयान हैं, लेकिन अगर हम इसको एक संवैधानिक व्यवस्था के तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि पुलिस और वकील ये संविधान के दो मजबूत स्तंभ हैं और जब इनके मामले आते हैं तो वो संवैधानिक व्यवस्था विफल क्यों हो जाती है। मैं समझता हूं कि ये हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ा सवाल और बड़ी चुनौती है।
पूर्व पुलिस अधिकारी कंठ कहते हैं कि दिल्ली पुलिस की छवि बेहद अहम है और ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए सही वक्त पर सही कदम उठाने की जरूरत थी।
दिल्ली पुलिस सिर्फ एक पुलिस फोर्स नहीं है। आप अंदाज कीजिए कि भारतवर्ष की राजधानी के लिए हर दृष्टिकोण से, चाहे वो हमारे इंटरनेशनल एम्बेसीज हो या हमारे वो राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सारे कार्यक्रम हो, मतलब इससे अधिक इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई लॉयर से और पुलिस वालों की टकराव हो गई और टकराव से आप बस एक फैसला कर ले, कोई गलत फैसला नहीं होना चाहिए।
पुलिसकर्मियों का धरना खत्म होने के बाद आला अधिकारी साख संभालने में जुटे हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पटनायक का दावा है कि पुलिसकर्मियों की चिंता को सही जगह तक पहुंचा दिया गया है। साकेत के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और 30,000 मामले में हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। अब इंतजार जांच के नतीजे का ही है। आदर्श राठौर, BBC, दिल्ली।
दिल्ली में धरना देने वाले पुलिसकर्मियों ने कल बार बार पूर्व पुलिस अधिकारी किरण बेदी को याद किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर कैसा हो, किरण बेदी जैसा हो, जैसे नारे लगे। किरण बेदी की याद इन प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों को बेवजह नहीं आई। इसके पीछे एक पुरानी घटना है। वरिष्ठ पत्रकार अजय सूरी ने उस घटना के बारे में बताया।
देखिए, वो जो 1988 का जो वाक्य, वो दो पार्ट्स में था। पहले में तो ये था कि मेरे ख्याल से जनवरी 88 था, जब एक लॉयर्स झुंड इकट्ठा हुआ था किरण बेदी के ऑफिस के बाहर। उस समय जो किरण बेदी थी, पहले वो डीसीपी ट्रैफिक थी और बाद में वो उत्तरी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है पुलिस, उनकी डीसीपी थी वो। उस समय पहला लाठीचार्ज हुआ। दूसरा ये था, उसके दो महीने के बाद 1988 में ही, शुरुआत की बात है ये, आई थिंक फरवरी मार्च के आसपास की, जब 3,000 से 4,000 लोगों का एक मॉब था। उस मॉब ने हमला किया था 30,000 प्रेमिसेस के अंदर वकीलों के ऊपर, और बाद में वकीलों ने कहा था कि ये पुलिस के लोग थे, हालांकि पुलिस ने इसको डिनाई किया। तो मामले ने तूल पकड़ा। फिर उस समय आई थिंक केंद्रीय होम मिनिस्ट्री ने एक गोस्वामी वाधा कमीशन बनाया था, और वो कमीशन जो था, उस कमीशन की हियरिंग्स को उस समय काफी मीडिया ने कवर किया, मैंने भी उस समय किया था स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस अखबारों में। लेकिन वो करीब एक साल से ज्यादा उसका हियरिंग हुआ, लेकिन उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया। मुझे लगता है कि वो एक पहली बार ऐसा हुआ कि वकीलों और पुलिस के बीच में जो एक जो दरार थी, वो पहली बार मतलब इतने इस तरीके से उभर कर आई कि आपस में द्वेष जो था उनमें इतना ज्यादा हो गया, और उसके बाद अब ये इंसिडेंट हो रहा है। हालांकि आप इन दोनों इंसिडेंट्स को कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि वो जो था एक प्री प्लान अटैक था वकीलों के ऊपर, जो एक पूरे मॉब ने किया। तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्किंग का इंसिडेंट था जो आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद बढ़ गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है अभी, उन्होंने कहा है कि उन राउडी वकीलों को जिन्होंने अटैक किया, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए ताकि उनकी वजह से पूरे बार की जो छवि है वो खराब ना हो।
जानकारी दे रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अजय सूरी। अरब सागर में बना चक्रवाती तूफान महा गुजरात के तट की ओर बढ़ रहा है। चक्रवात के असर से गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश होगी। ये चक्रवात कल यानी 7 नवंबर को तट से टकरा सकता है। चक्रवात महा पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथी वात्सल्य राय ने बात की मौसम विभाग की अधिकारी मनोरमा मोहंती से।
अभी फिलहाल सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, अभी फिलहाल तो ईस्ट सेंट्रल अरबियन सी में है। उसका मूवमेंट अभी रिकवर होने का बाद मूवमेंट रहेगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वर्ड, दैट इज टुवर्ड्स गुजरात, एंड इट इज लाइकली टू क्रॉस गुजरात कोस्ट अराउंड दीव का आसपास वो क्रॉस करेगा एज ए साइक्लोनिक स्टॉर्म। उसका स्पीड रहेगा, मैक्सिमम स्पीड ज्यादा से ज्यादा 80 किलोमीटर पर आवर रहने का संभावना। कोस्टल एरिया में बारिश रहेगी।
कौन कौन से वो इलाके हैं जो ज्यादा प्रभावित होंगे जब ये क्रॉस करेगा साइक्लोन?
आपका दीव प्रभावित रहेगा, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, इवन अगर साउथ गुजरात देखा जाए तो सूरत, भरूच, आनंद वो भी रहेगा, और भावनगर, राजकोट में भी उसका प्रभाव रहने का संभावना है।
तो ये इसका लैंडफॉल कब होगा, इसके बारे में कोई जानकारी?
लैंडफॉल उसका मोस्टली अराउंड मॉर्निंग आवर्स 7 नवंबर।
तो इसको लेकर क्या कुछ प्रिकॉशंस के लिए आप लोगों ने कहा है? कुछ
अभी गवर्नमेंट को सभी इन्फॉर्मेशन जानकारी दी गई है, गवर्नमेंट एक्शन ले रहा है।
जो आम लोग हैं उनके लिए किसी तरह का कोई खतरा आप देखती हैं?
आम लोग के लिए नहीं है, मोस्टली कोस्टल रीजन में बारिश रहेगी, विंड रहेगी, वो सारे आम लोगों के लिए जो मोस्ट प्रॉब्लम होगा क्रॉप डैमेज रहेगी।
तो ये बारिश जो इसके असर से हो सकती है वो कितने दिन तक बारिश होगी?
2 दिन रहेगी, 6 को रहेगी 6 और 7।
गुजरात के अलावा क्या भारत का कोई और राज्य, कोई और हिस्सा प्रभावित होने की संभावना है?
होने का संभावना नहीं है।
मौसम विभाग के अधिकारी मनोरमा मोहंती। चक्रवात महा का फिलहाल क्या असर दिख रहा है ये बताने के लिए कार्यक्रम में लाइव शामिल हो रहे हैं गुजरात के सोमनाथ से बीबीसी गुजराती सेवा के हमारे साथी तेजस वैद्य। तेजस, अभी वहाँ मौसम कैसा है, क्या हालात हैं? मनोरमा मोहंती कह रही थी कि 6 और 7 दोनों दिन बारिश होगी, तो क्या अभी बारिश हो रही है, बारिश के आसार हैं, ऐसा कुछ लग रहा है?
जी, मैं 2 दिन से यहाँ पे हूँ, वेरावल और सोमनाथ जो इलाका है वहाँ पे मैं घूम रहा हूँ। यहाँ पे 2 दिन से कोई बारिश नहीं हो रही है और अभी सुबह सुबह भी बारिश का कोई आसार दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि 6 तारीख और 7 तारीख को यहाँ पे बारिश हो, लेकिन फिलहाल तो कोई बारिश नहीं है। बात करें इंतजाम की तो यहाँ पे वेरावल और ऊना में NDRF की 2 टीम तैनात की गई है। एक टीम में 25 जो इनके जवान है, और गुजरात और वेरावल के अलावा मतलब जाफराबाद, फिर पोरबंदर, द्वारिका, बोटाद, इन सब जगह पे NDRF की टीमें पहुंच गई है। राज्य में कुल स्पेशलिस्ट टीम यहाँ पे रखी गई है गुजरात में, और मैं बात करूँ गिर सोमनाथ जिले की जहाँ पे मैं हूँ, तो वहाँ राउंड द क्लॉक कंट्रोल रूम अभी एक्टिव हो गया है जो कि कलेक्टर ऑफिस से ऑपरेट हो रहा है। उसके अलावा बात ये भी है कि जो सोमनाथ का जो समुद्री तट है वहां पर आज से लोगों को, जो पर्यटक आते हैं उनको जाने के लिए पाबंदी लगा दी गई है। वो 12 तारीख तक लोगों को जाने के लिए वहां पे ना बोला गया है। कलेक्टर ने कल ये सूचना जारी करते हुए कह दिया है कि लोग जो है समुद्री तट पर ना घूमे। जो सोमनाथ के छूके ही केंद्र शासित प्रदेश है दीव, तो वहां पे भी कल से लोगों को समुद्र तट पर जाने के लिए ना बोला गया है
जी।
और उस कल जो गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, उन्होंने भी कहा है कि जो महा जो साइक्लोन आने की संभावना है उसकी जो गति है वो थोड़ी कम हो गई है अब
जी। गति कम हो गई है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तेजस वैद्य सोमनाथ से हमसे जुड़े थे। और अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में नई सरकार गठन की डेडलाइन 9 नवंबर की है, जिसमें सिर्फ 4 दिन शेष हैं, लेकिन सरकार कैसे बनेगी इसकी सूरत अब तक साफ नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों अपने रुख पर कायम हैं। फिलहाल क्या है वहां की स्थिति, ये जानने के लिए मैंने मुंबई में मौजूद बीबीसी संवाददाता अभिजीत कांबले से बात की।
भाजपा की अहम बैठक महाराष्ट्र में मुंबई में हुई। देवेंद्र फडणवीस जो दिल्ली में थे वो वापस आने के बाद ये बैठक हुई है। अब भाजपा के जो नेता है उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह चाहते हैं कि अलायंस की सरकार महाराष्ट्र में बने, और उन्होंने ये भी कहा है कि शिवसेना को हमारी तरफ से प्रस्ताव दिया गया है और हमें अब शिवसेना के प्रस्ताव का इंतजार है, ये भाजपा के नेताओं ने कहा है। इसके साथ साथ भाजपा के एक वरिष्ठ नेता गिरीश महाजन, इन्होंने बीबीसी मराठी से बात करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री का जो पद है वो अगले 5 साल तक बीजेपी के पास ही रहेगा और देवेंद्र फडणवीस ही चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। शिवसेना को या चीफ मिनिस्टर का पद मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद मिल सकता है और कैबिनेट में कुछ और जो विभाग है वो उनके खाते में जा सकते हैं, ऐसे गिरीश महाजन ने कहा है।
और एनसीपी और कांग्रेस नेताओं ने भी कल महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की, उसके बाद क्या बताया गया?
राज्यपाल से मुलाकात के लिए एनसीपी और कांग्रेस के कुछ नेता गए थे, उसमें शरद पवार नहीं थे। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि हमने गवर्नर के साथ जो मुलाकात की है वो राज्य में बारिश को लेकर जो हालात बने हैं उसको लेकर उन्होंने हमने उनसे बात की है, ऐसा एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं ने बताया।
और शिवसेना की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया कल सामने आई?
जी बिल्कुल, भाजपा की ये बैठक होने के बाद भाजपा के नेताओं ने जो बयान दिए थे उसके बाद शिवसेना के नेता संजय राउत का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी प्रस्ताव अब तक नहीं मिला है और हमें भी उनको कोई भी प्रस्ताव नहीं देना है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि लोकसभा चुनाव के वक्त सीटों के बंटवारे में जो भी तय हुई थी बातें कि सत्ता का बंटवारा किस तरीके से होगा वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करें, हमारा इसके अलावा कोई प्रस्ताव नहीं है, ये संजय राउत ने कहा है।
जी देखिए, अभी का जो सूरत हाल है अभिजीत, उसको देखते हुए आज क्या घटनाक्रम हो सकते हैं, क्या आज कुछ इस गतिरोध के टूटने की कोई उम्मीद नजर आती है?
ये जो मसला है वो हल होता दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब अब 12 दिन हुए हैं और महाराष्ट्र में अब तक सरकार नहीं बनी है। शिवसेना का जो रुख है भाजपा को लेकर वो कड़ा दिख रहा है इस बार, और उनका ये कहना है कि 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर हमें मिलना चाहिए, और ये जो बातें हैं उसको लेके मंगलवार के दिन जो भी घटनाएं हुई हैं उससे ये स्पष्ट लग रहा है अभी भी ये मसला जो है हल होता दिखाई नहीं दे रहा। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस नागपुर में सरसंघचालक मोहन भागवत को भी जाके मिले हैं, हो सकता है उनके हस्तक्षेप के बारे में उन्हें उनको कहा होगा, इस तरीके के भी प्रयास शायद बीजेपी की तरफ से होंगे। बुधवार के दिन शरद पवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रहे हैं, उसमें वो क्या कहेंगे ये भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शरद पवार सोनिया गांधी को मिलने के बाद जब उन्होंने मीडिया से बात की थी तब उन्होंने कहा था कि हमारे पास शिवसेना से कोई प्रस्ताव नहीं आया है कि हमारा सपोर्ट चाहिए, लेकिन उस वक्त शरद पवार ने ये भी खारिज नहीं किया था कि शिवसेना के साथ हमारी अलायंस नहीं होगी।
जानकारी दे रहे थे बीबीसी मराठी सेवा के संवाददाता अभिजीत कांबले। और अब बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में आई नई तलखी की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित अपने दूतावास के वीजा सेक्शन को बंद कर दिया है। इससे पहले अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के पेशावर स्थित कॉन्सुलेट को बंद कर चुका है। बीते हफ्ते दोनों देशों के बीच सीमा पर भी तनावपूर्ण हालात हो गए थे। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथी वात्सल्य राय ने बात की पेशावर में मौजूद बीबीसी उर्दू के सहयोगी रफ्तुल्लाह औरकज़ई से।
तीन चार दिन पहले उधर अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं वो ब्लेम कर रहे हैं वहाँ की जो गवर्नमेंट है कि ये उनको फॉलो किया जाता है, उनको वहाँ पे ये जब बाहर जाते थे एम्बेसी से बाहर तो उनको रोकते थे, जो अफगान ऑफिशियल्स हैं उनकी गाड़ियों को रोकते थे, उनको वापस जो है एम्बेसी में भेजा जाता था। तो इस तरह दो तीन वाकयात हुए, उन्होंने फिर ये किया कि एज ए प्रोटेस्ट जो है वो कल से जो है उन्होंने जो पाकिस्तानी एम्बेसी थी अफगानिस्तान में काबुल में जो खासकर है तो उसको बंद करने का उन्होंने इनडेफिनेटली ऐलान किया है कि कब खुलेगा। और इसके साथ ही यहाँ पेशावर में जो अफगान कॉन्सुलेट है वो पहले ही से तकरीबन तीन हफ्तों से बंद है। मसला ये है कि यहाँ पे एक मार्केट थी पेशावर में जो अफगान मार्केट के नाम से जानी जाती है, कुछ शॉप्स थे उसमें, अफगानिस्तान उसकी मलकियत का दावा करता है, ऑनरशिप का, कि ये हमारी है, बहुत पुरानी वो कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पाकिस्तानी शहरी था, ये दावा क्लेम कर रहा था कि ये तो हमारे जो एंसेस्टर्स है, मतलब मेरे अब्बा अजदाद है, उन्होंने ये जो मार्केट थी ये अफगान हुकूमत को दी थी सिर्फ किराए पे, रेंट पे दी थी। मामला जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट में तहकीकात हुई तो फैसला जो है वो पाकिस्तानी के हक में हुआ। वो वहाँ पे जो अफगान गवर्नमेंट का एक फ्लैग था ऊपर उस मार्केट पे, तो वो जो पाकिस्तानी पुलिस है उन्होंने वो उतार दिया। उस पर अफगान हुकूमत ने काफी जो है ना वो नाराजगी का इजहार किया, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया कि उन्होंने अच्छा नहीं किया है। तो फिर उन्होंने जो है ना एज ए प्रोटेस्ट ये जो कॉन्सुलेट है पेशावर में इसको बंद किया हुआ है।
पेशावर में जो कॉन्सुलेट बंद हुआ है, दूसरी तरफ काबुल में जो पाकिस्तान ने अपनी एम्बेसी बंद की है, इसका क्या असर देखने में आ रहा है?
इसके तो बड़े जो है ना असरात खराब ही आ रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ के जो लोग हैं यानी आम लोग हैं वो सफर हो रहे हैं। अब ये जो काबुल में पाकिस्तानी एम्बेसी बंद हुई है, वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन रोजाना जो है 2000 के करीब लोगों को जो है वो वीजे दिए जाते हैं, जो बाकी कॉन्सुलेट है और जो पाकिस्तान की एम्बेसी है। तो वो मोस्टली जो अफगान लोग हैं वो पाकिस्तान पे डिपेंड करते हैं, ये इलाज के लिए इधर आते हैं, इनके बिजनेसेस हैं यहाँ पे, इनके जो है ना फैमिलीज रहते हैं, अगर ये बंद हो गए हैं तो उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात है। ऐसे पाकिस्तान से जो है जो हमारे यहाँ पे जो लेबर तबका है वो यहाँ से अफगानिस्तान जाता है, अफगानिस्तान में ये है कि वहाँ पे वो ये कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, तो हमारे जो पाकिस्तानी लेबर है ये बड़ी तादाद में उधर जाते हैं, तो उनके लिए बहुत मसला है। तो ये काफी टेंशन है। अभी तो ये जो नया इल्जाम कल जो है अफगान हुकूमत ने लगाया है कि जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में उसको जो है पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उन्होंने समन किया था और फिर उनको कुछ बदतमीजी भी की है, मिसबिहेव किया है।
इसे लेकर पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब आया?
अभी तक उसकी न तो जो है ना पाकिस्तान ने कोई तस्दीक की है न उसने कोई इसकी तरदीद की है।
दोनों देशों के बॉर्डर्स पर भी तनाव की खबर है, इसके बारे में क्या जानकारी है?
एक हफ्ता पहले जो है वो बॉर्डर के ऊपर फायरिंग हुई थी, जो हम यहाँ पे जो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया था कि इस तरह अफगान हुकूमत ने उनके इलाके में फायरिंग की है। चतराल का इलाका है पाकिस्तान का और उसमें 5 लोग जो है वो जख्मी बताए गए हैं, जिसमें 3 जो है वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे। फिर पाकिस्तान ने भी जो है ना वो रिटेलिएशन की है, जवाबी कार्रवाई की है, वहाँ पे जो आर्टिलरी से जो है ना काफी अफगान इलाकों पे गोलाबारी की है, लेकिन उसकी कोई तफसील नहीं है कि उसने कैजुअल्टी हुई है कि नहीं। ये 2 दिन तक ये क्लैश जो है चलते रहे, फिर जो है ना ये उसमें खामोशी आ गई है। तो
जानकारी दे रहे थे बीबीसी उर्दू के सहयोगी रफ्तुल्लाह औरकज़ई। और अब वक्त है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का, और गुरप्रीत सैनी तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में मेरे सामने बैठी हैं। गुरप्रीत बताइए
जी। कुलदीप, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। ये बहुत ही संवेदनशील अदालती मामला है जिसके चलते सुरक्षा संबंधी चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं। इस बीच कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर अगले मंगलवार को अयोध्या में 1,000,000 श्रद्धालु पहुँचने वाले हैं। वहीं दिल्ली ने ली सांस, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में आबोहवा हुई खराब, ये हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण से कोई राजधानी छोड़े ये उन्हें मंजूर नहीं है, और दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग प्रदूषण फैलाने और खुले में कूड़ा जलाने पर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सीपीआई माओवादी दुनिया का छठा सबसे खतरनाक चरमपंथी संगठन, ये कहा है अमेरिका के विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान, इस्लामिक स्टेट, अल शबाब, बोको हराम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फिलीपींस के बाद सीपीआई माओवादी दुनिया का छठा सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक चरमपंथी संगठन है। और बैंक धोखाधड़ी में 190 जगहों पर सीबीआई ने छापामार कार्रवाई, बहुत बड़ी कार्रवाई की। कल इंडियन एक्सप्रेस अखबार में ये खबर है, सीबीआई ने 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक धोखाधड़ी के कई मामलों में जांच के सिलसिले में मंगलवार को देश भर में 190 जगहों पर एक साथ छापे मारे। इसके अलावा म्यांमार में विद्रोहियों के कब्जे में एक भारतीय की मौत हो गई है। म्यांमार के रखाइन इलाके में विद्रोही गुट अराकन आर्मी द्वारा अगवा किए गए जाने के बाद उनके कब्जे में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। भारत और म्यांमार के सुरक्षा बलों द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में बंधक बनाए गए अन्य 5 भारतीयों को मंगलवार को सुरक्षित बचा लिया गया।
जी, एक खबर का जिक्र मैं कर दूं, दैनिक जागरण में है ये खबर कि आप विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका खारिज हो गई है। राष्ट्रपति ने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में को चेयरमैन बनाए गए आपके 11 विधायकों को कथित तौर पर लाभ का पद मानते हुए अयोग्य ठहराए जाने की याचिका खारिज कर दी है। राष्ट्रपति ने उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया है। एक और खबर इसी अखबार में है कि प्रियंका वाड्रा ने संभाली दिल्ली कांग्रेस की कमान। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अब दिल्ली कांग्रेस की कमान भी संभाल ली है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने प्रदेश कांग्रेस को प्रस्ताव दिया है कि जहाँ उनकी ज़रूरत हो उन्हें बुलाया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए गुरप्रीत सैनी। और अब खेल की दुनिया का हाल।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले खबर बैडमिंटन के कोर्ट की, जहां पर खेला जा रहा है चाइना ओपन, और आज मुकाबला होगा साइना नेहवाल का चीन की खिलाड़ी यन यन के साथ। तो वहीं पुरुष एकल मुकाबले में भारत के पारुपल्ली कश्यप थाईलैंड के खिलाड़ी सित्तिकोम थमासिन के खिलाफ मैदान में उतरेंगे, और साई प्रणीत का मुकाबला होगा इंडोनेशिया के खिलाड़ी टॉमी सुगार्तो के साथ, और समीर वर्मा हांगकांग के खिलाड़ी ली चुक यूई से भिड़ेंगे। और क्रिकेट के मैदान पर आईपीएल को और रोचक बनाने के लिए लीग में जल्द ही पावर प्लेयर्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है। इसके तहत टीमें 11 नहीं बल्कि 15 खिलाड़ियों को मैदान पर उतार सकती हैं। इसमें से कोई भी खिलाड़ी किसी भी दूसरे खिलाड़ी को मैच में किसी भी मोड़ पर रिप्लेस कर सकता है। आमतौर पर टीमें कोई विकेट गिरने या ओवर खत्म होने पर किसी खिलाड़ी का सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं। अभी ये नियम बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखा गया है, जिन्हें ये पसंद आया है। अभी इस कॉन्सेप्ट को आईपीएल की गवर्निंग बॉडी के सामने रखा जाना बाकी है। और भारतीय मेंस टेबल टेनिस टीम वर्ल्ड रैंकिंग में 9वें स्थान पर पहुंच गई है। यह उसकी सर्वश्रेष्ठ टीम है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की ताजा रैंकिंग के मुताबिक मेंस टीम के 272 अंक हैं। चीन 290 अंक के साथ पहले स्थान पर, जापान 288 अंक के साथ दूसरे, और जर्मनी 286 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। भारतीय टीम इससे पहले 10वें स्थान पर थी। भारतीय मेंस टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 से लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं। टीम तब स्वर्ण पदक जीती थी। इसके बाद एशियन गेम्स में कांस और कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए गुरुप्रीत सैनी से।
बीबीसी समाचार। दिल्ली में पुलिसकर्मियों का लगभग 11 घंटे तक चला विरोध प्रदर्शन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद मंगलवार रात खत्म हो गया। अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक ने माना है कि यूक्रेन के एक शीर्ष अधिकारी से कहा गया था कि यूक्रेन को आर्थिक सहायता तभी मिलेगी जब वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन के खिलाफ जांच शुरू करेगा। उत्तरी मैक्सिको में संदिग्ध ड्रग माफिया के हमले में 6 बच्चों और 3 महिलाओं समेत कम से कम 9 अमरीकी नागरिकों की मौत हो गई है। ब्राजील के सांसदों ने मांग की है कि उन 2 कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों पर नरसंहार और दूसरे अपराधों के तहत मामला दर्ज किया जाए जिनकी लापरवाही से एक बांध टूटा और करीब 300 लोगों की मौत हो गई। 11,000 वैज्ञानिकों ने उस अध्ययन का समर्थन किया है जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए गंभीर और स्थायी उपाय नहीं किए जाते तो मनुष्य को इसके बहुत बुरे परिणाम भुगतने होंगे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात आज शाम 7:30 बजे दिन भर में फिर होगी। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। तो अब कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति, और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।